Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
तो ये जो अनुभव है कि जिस वक्त आपको कोई रास्ते में प्रॉब्लम आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, विघ्न आते हैं, तूफान आते हैं, व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, यज्ञ के इतिहास में आते हैं, दैवी परिवार में आते हैं, संघर्ष है, तो उस समय में आपको बाबा की मार्ग प्रदर्शना मिलेगी। और वो मार्ग प्रदर्शना की जो बाबा की ईश्वरीय वाणी होगी, ईश्वरीय जो सम्मति होगी, सदमति, सबको सदमति दो भगवान, वो महात्मा गांधी गीत गाते थे प्रार्थना सभा में, सबको सम्मति दो भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो वो ऐसी सम्मति आपको देगा जो विचित्र होगी, जो सबसे न्यारी होगी, लेकिन जिसके द्वारा ही सफलता मिलने वाली होगी। वो तब होगा आपको, जिसको टचिंग हम कहते हैं, वो तब होगा जब बुद्धि क्लियर होगी, लाइन क्लियर होगी, और उसके साथ आप साथ होंगे, आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेगा और आप भी ये सोचेंगे मैं साथी से जरा पूछ तो लूं। अगर आप अपनी मन मत पर चलेंगे तो वो आपको राय अपनी कहां से देगा। तो ये अनुभव होंगे अनेक प्रकार के, जिससे आपको लगेगा कि भाई ये करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ क्रिएटिविटी, क्योंकि परमात्मा क्रिएटिव क्रिएटर है, विश्व का रचयिता है, और एक ऐसे विश्व का रचयिता है जिसका स्वप्न सब संसार देखता है, जो हर एक का लक्ष्य स्वरूप है। वास्तव में कोई उसको नाम कुछ भी देता हो, समझता हो ना समझता हो, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में उसका अलग नाम कहा गया है। जो आर्थिक दर्शन को, अर्थ दर्शन अर्थशास्त्र को जानने वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, राजनीति शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, या जो इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं, जो दर्शन के ज्ञाता हैं, सब लोगों ने अपने अपने संकल्पना की है कि वो विश्व कैसा होना चाहिए जिसमें संसार जो है वो सुख से रह सकता हो। लेकिन वो बाबा ने हमें उसका समन्वय एक रूप से बता के हमारे सामने एक मॉडल पेश कर दिया है कि वो कैसा संसार होगा, उसको क्रिएट करने का हमें साथ दे रहा है, हम उसको साथ दे रहे हैं। साथी किस बात के हैं, ये भी तो सोचिए, साथी किस बात के हैं। हाँ, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, क्यों, व्हाट इज द नेसेसिटी, किसी को हम साथ जो लेके जाते हैं क्यों लेके जाते हैं, कि एक दूसरे की राय सलाह हो जाएगी, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। तो वो हमारा मददगार है, हम उसके मददगार हैं, तो हमारे में क्रिएटिव विचार आएंगे, कोई ना कोई नया प्लान, नई बात करने की नई योजना, कोई सेवा का नया तरीका, कोई समझाने का नया तरीका, कोई अपने जीवन में पुरुषार्थ करने का नया तरीका, स्वयं अपने संस्कार बदलने का कोई नया तरीका, कुछ ना कुछ नवीनता, क्योंकि वो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है, तो नवीनता आएगी जीवन में। प्रतिदिन आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आज जब सूर्य उदय हुआ तो हमारा भी एक नया उदय हुआ, और एक नए विचार, नई उमंग, नई तरंग हमारे जीवन में आई, और कुछ हमें नया कुछ देकर गई, नई उपलब्धि हुई, मन कुछ कहेगा कि ये चीज कर डालो। उसी में ही तो जीवन की सफलता है, वरना तो अगर सब दिन एक जैसे हमारे ऑर्डिनरी वे में गुजरते गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा ये जीवन तो निकल गया। तो क्या ऐसा अनुभव होता है उसके साथ का, उससे कोई ऐसी राय मिलती है कि बच्चे इस प्रकार से सेवा करो, ये नई योजना बनाओ, ये इस तरह का कुछ कार्य करो, इस तरह के कुछ विचार आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो ये भी विकास हमारा कैसे पूरा होगा, और बाबा तो सब बच्चों का विकास पूरा करने की लिए करते हैं। आज भी मुरली में हमने क्या सुन रहे थे सुबह को, कि बाबा कह रहे थे कि भाई बच्चों को अपने से भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा हमें क्रिएटिविटी सिखाएंगे, हम में कुछ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, हमारी रचनात्मक बुद्धि होती है, बुद्धि का विकास तो होता है, दिव्य बुद्धि होती है, विवेक जागृत होता है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, एक रितम भरा बुद्धि होती है, एक निरंकुश बुद्धि होती है, एक सांकुश बुद्धि होती है। बुद्धियां अनेक प्रकार की हैं, लेकिन जो रचनात्मक बुद्धि है, जिसमें के कुछ नई रचना करने का, नया कुछ करने का ख्याल आता है और व्यक्ति उस जोरदार ख्याल से, हल्का सल्का नहीं, ऐसा पावरफुल संकल्प आता है कि उसको कुछ कर डालता है। जैसे चित्रकार को एक नया चित्र बनाने के लिए नया दृश्य दिखाई देता है और वो रंग और ब्रश लेकर कैनवस पर एक नया चित्र बना देता है। एक आर्किटेक्ट है, उसको एक भवन निर्माण में सीमेंट लोहा वगैरह वही होता है, लेकिन एक नया रूप देकर एक इमारत बनाता है, मंजिल बनाता है। तो ये जो हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, क्रिएटर के बच्चे हैं और वो हमारे साथ है और हम में कुछ क्रिएटिविटी प्रस्फुटित नहीं होती, तो ये क्या कारण है कि क्यों ऐसा अनुभव हमें नहीं होता? तो हम समझते हैं कि ये अनुभव हम में जरूरी होना चाहिए। और फिर दूसरा इसके अलावा जो अनुभव है वो ये है कि हमारा व्यक्तिगत, बहुत बार हम अपने पुरुषार्थ से सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी जितनी उन्नति होनी चाहिए, जितनी प्रगति होनी चाहिए, जो हमारे अनुभव होने चाहिए, बाबा की जो मुरलियां चल रही हैं, जब हम सुनते हैं और देखते हैं कि उसमें और हमारे जीवन में गैप है, काफी फर्क है, तो वो उस टाइम जो विचार चलता है कि इसको कैसे भरा जाए, कैसे पूरा किया जाए, इस गल्फ को, ये जो फासला है इसको कैसे कम किया जाए, अगर समाप्त ना किया जाए तो उसके लिए बाबा के जो सदगुरु है वो, और हमें मन की चाल, हमारा मन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि सबसे बात जो मुश्किल है दुनिया में, मुश्किल से मुश्किल, सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो मन की चाल को समझना है। वो कहते हैं ना, समुन्द्र की गहराई को जाना जा सकता है लेकिन मन की गहराई को जानना मुश्किल है। इसमें इतनी विचारधाराएं, विचार एक होगा लेकिन उसमें मोटिव्स कई भरे हुए होंगे, उसमें जो मनुष्य की इंटेंशन है, जो उसकी नीयत है, वो कई तरह की होगी। कई मुखौटे ओढ़कर मनुष्य काम करता है, भीतर से होता कुछ और है और बाहर दिखावा कुछ और करता है। रियल इंसान देखना हो तो वो तो खुद भी नहीं जानता मैं रियल क्या हूं। मनुष्य अपने आप को भी नहीं जानता कि मेरी रियलिटी क्या है। जो मुखौटा ओढ़ता है, शीशे में देखता है, तो वो अपने आप को भी वैसे ही समझने लग जाता है। तो जो हमारा मन कई दफा गलत काम करने लग जाता है, उसको अच्छा सा रूप देकर, रैशनलाइज करके, किसी बात की दलील देकर, तर्क देकर, रीजन बताकर कि ये इसलिए हम कर रहे हैं, देखने में वो रीजन बहुत ठीक होगा, लेकिन उसके नीचे अगर जाओ, जैसे बिलो द कारपेट डस्ट होता है, ऊपर से कारपेट सुंदर देखने में आएगा, जब हटाओगे हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, तो देखोगे अरे भाई ये मिट्टी फिर नीचे ऐसे के कहां से आ गई। भारत में तो है ही डर्टीएस्ट कंट्री, मिट्टी तो आती ही रहती है, पता नहीं कहां से आ जाती है, लूज डस्ट इतनी है। तो वो मन में भी इस तरह के जो सारे संकल्प हैं, वो पेचीदगियां, कॉम्प्लिकेशंस जिसको कहा जाए, भरा हुआ होता है। इसलिए सरलता का जो गुण है उसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। बिल्कुल सरल बन जाना वो तब संभव है जब हम बिल्कुल निर्मल बन जाएं। अनेक प्रकार के जो मल आवरण और विक्षेप हैं, वो हमसे दूर हो जाएं, तब हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल बन सकता है, और जब पूर्ण रूप से निर्मल बने तभी वो पूर्ण रूप से सरल बन सकता है। सरल आसान नहीं है बनना, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विकेडनेस है, चालाकी है, मक्कारी है, धोखादेही है, फरेब है, बनावट है, ढोंग है, हिपोक्रेसी है। मनुष्य में कितनी खराबियां हैं उसकी अगर लिस्ट बनाने लगे तो गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा एक ग्रंथ बन सकता है, इतनी खराबियां उसमें हैं। लेकिन उस जाल को अगर हम समझते नहीं तो बाबा समझता है पूरे रूप से, वो उसका पूरा जानकार है। उसकी गाइडेंस के बिना हम ठीक हो जाएं ये असंभव है। कोई कितना भी समझदार हो, तीव्र पुरुषार्थी हो, बहुत ही मेहनत करने वाला हो, खूब योग लगाने वाला हो, मेरा ऐसा विश्वास है कि मनुष्य अपने आप में अपने एफर्ट से ठीक हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य ठीक हो नहीं सकता जब तक भगवान उसके कान ना पकड़े, उसका नाक ना पकड़े, उसको थोड़ा सा ठीक ना करे और इधर से उधर ना करे, चलाए नहीं, अपनी लगाम में उसको ना रखे। ये घोड़ा ऐसा उछृंखल है, सवारी को भी पटक देने वाला है, खुद भी खड्डे में गिरने वाला है, है? वो कहते हैं ना, इफ विशेज वेयर हॉर्सेज ओनली फूल्स वुड राइड देम। ये ऐसा घोड़ा है जिस पर कोई बेवकूफ ही बैठेगा, खुद भी मरेगा घोड़ा भी मरेगा। तो वो तभी हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान हमारा साथी हो। बिना उसके साथ के संपूर्णता और संपन्नता, बिना हमारी समर्पण मयता के उसका साथ नहीं मिलेगा, वो हमारे साथ नहीं चलेगा जब हम अपने आप को उसके हवाले नहीं कर दें। और जब हम समर्पण करें तो वो हमारा साथी बनेगा, और जब वो हमारा साथी बनेगा तो ये जो चार पांच तरीके से मैंने कहा, वो अनुभव युक्त हमें ये सब चीजें प्राप्त होंगी, उससे ही हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ पाएंगे, उसके बिना ये असंभव है। ये चीज हमें जानने की जरूरत है। तो मुख्य रूप से जो पांच प्रकार के मैंने बताए, एक तो हमें फॉरवर्ड करेगा, पहले से बताएगा कि ये रास्ता गलत है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मीठे बच्चे इसको छोड़ दो, सुनो मेरी बात, ध्यान दो, सावधान हो जाओ, इसको छोड़ दो। ये रायल कुल वालों के लिए उचित नहीं है, ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं है। पहले पहले वो ये सावधानी देगा। ये दूसरे नंबर पर, पहले पहले तो पहले ही बता देगा कि इस तरह जाओ मत, फॉरवार्न करेगा। फिर अगर हम चल पड़े तो फिर ये कहेगा कि नहीं, आगे मत बढ़ो, इससे पीछे हटो, ठीक चलो। फिर जो उसके अनेक प्रकार के संबंध हैं उनका अनुभव, इसके अलावा जो उसके अनेक ईश्वरीय गुण हैं उनका अनुभव, इसके अलावा जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक हमारी बुद्धि हो, कुछ ना कुछ नई रचनाएं हम करें, नई योजनाएं हम बनाएं, उसका अनुभव। फिर जो हमारे मन की चाल है, जो हम खुद भी नहीं समझते कि हमारा मन क्या गलत काम कर रहा है, हम समझते हैं हम सेवा अर्थ ये कर रहे हैं, यज्ञ के फायदे के लिए कर रहे हैं, बहुत सी बहानाबाजियां मन बाहर का रूप रचता है, लेकिन असल में कुछ और होता है अगर उसके नीचे देखा जाए, तो उसके लिए हमें सावधान करना, ये ठीक नहीं है, ये गलत कर रहे हो। ये सारी चीजें हमें अनुभव हो गई जो अगर हमारा, हमें उसका साथ मिलेगा। तो है क्या कि जीवन में हमारे वो साथ हो, लेकिन जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? कई तरह से लोगों ने जीवन की व्याख्या की है, जीवन क्या है? कोई कहता है जीवन एक नाव है, ये इस पार से उस पार ले जानी है, है? कोई कहता है जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये शुरू से लेकर एंड तक इट इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये जिंदा रहे आदमी, अपना सिर बचा के चले, ये एक कश्मकश है, उसी में संघर्ष में मनुष्य लगा रहता है। कोई कहता है लाइफ इज ए वॉर अगेंस्ट ईविल, दुनिया में बुराई बुराई है सब जगह, उससे युद्ध करने का नाम ये जीवन है, जीवन एक संग्राम है जिसको कहते हैं। अलग अलग लोगों ने कहा है ये एक खेती है जीवन, जिसमें जैसा कर्म बोवो वैसा फल उसका उगता है, वैसा काटना पड़ता है, ये जीवन क्या है, वास्तव में ये जीवन क्या है? ये भी कुछ दृष्टिकोण हैं जो आपके सामने लोग रखते हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थी जीवन के हिसाब से अगर हम देखें, जिस जीवन को हम चाहते हैं कि भगवान अपना साथ दे, हमारा साथ निभाए, जीवन साथी, कोई थोड़ी देर के लिए साथी नहीं, गाड़ी में हम बैठते हैं हमारे साथ कोई होता है, वो अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, हम आगे चलते हैं, वो साथ टेम्परेरी होते हैं, जीवन साथी। लोग तो जीवन साथी हस्बैंड एंड वाइफ को कहते हैं, लेकिन वो भी एक तो पहले मरता है, दूसरा बाद में मरता है। जीवन साथी कहाँ होते हैं, मृत्यु तो पहले हो ही जाती है। और कई दफा लगड़े आपस में झगड़े उनके होते हैं, डिवोर्सेस भी हो जाते हैं। आज की दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, ब्राइड बर्निंग के केसेस भी हो जाते। तो वो जीवन के साथी कहने को है सिर्फ, लेकिन भगवान जीवन का साथी। जीवन क्या है? अगर हम इस विद्यार्थी जीवन और पुरुषार्थी जीवन को देखें तो जीवन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइफ इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द अदर नेम फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे सामने उत्तरदायित्व का कुछ जो रखा गया है उसका नाम जीवन है। जब से आपने ज्ञान में प्रवेश किया, योगी जीवन को धारण किया, अपनाया, ईश्वर के बने, तब से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है।